ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சத்கன் சித்கன் ஆனந்தகன் கல்யாண குணகன் நிலை அவ்யக்த அவ்நாசி சர்வேஸ்வர் ஜெகத் நியந்தா ஜெகதாதார் கருணா வருணாலய், प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ ईशावास्य उपनिषद के माध्यम से स्वस्वरूप चर्चा कर रहे थे. ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र जो तत्ववेता आत्मवेता पुरुषों के लिए, ज्ञानियों के लिए एक मार्ग, ये दोनों ही मार्ग वेद सम्मत हैं, ऐसा व्यास जी का मत है. प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, जिन दोनों मार्गों के विषय में आप प्राय संतों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है. निवृत्ति का मार्ग सन्यासियों के लिए, अर्थात जो निवृत्ति प्रधान है, जिन्होंने सन्यास से अभिप्राय है सर्वन्यास, सब कुछ का त्याग, माने संपूर्ण एषणाएं, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा आदि भोगों का जिन्होंने त्याग किया है. सन्यास का अर्थ होता है सर्वेन्द्रिय, सभी इंद्रियों के विषयों का, और इंद्री इंद्रियों के विषयों का त्याग, उसी का नाम सन्यास है. और उसने अपनी इंद्रियों से विषयों को ऐसे हटा लिया है, विषय वासना एष्णादि से, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, खोल के भीतर बंद कर लेता. उसी प्रकार जिसने सब विषयों से, एष्णाओं से अपनी इच्छाओं को समेट लिया और स्वस्वरूप में अपनी आत्मनिष्ठा में स्थिर होकर उसने इस जगत को ईश्वर के रूप में देख लिया. परमेश्वर ही जगत रूप में व्याप्त है. बोले कैसे व्याप्त है? ईशावास्यदम सर्वम, ये जगत्यान जगत, संपूर्ण जगत को ईश्वर से आच्छादित कर दिया, माने ऐसे आच्छादित कर दिया जैसे सूत में कपड़ा, ताने और बाने को लेकर कपड़ा तैयार हुआ और ताना बाना के अतिरिक्त उसमें और कुछ है नहीं, पर उसे कपड़ा कहते हैं. ये क्या है? बोले ये कपड़ा, कोई कहता है ये ताना बाना है अथवा ये सूत है, कोई नहीं कहता है. परंतु कपड़ा कहलाने पर यदि आप विचार पूर्वक, तत्व पूर्वक देखें तो उसमें कपड़ा तो काल्पनिक है और ताना बाना जो सूत है वो वास्तविक है. सूत वास्तविक है और उसमें कपड़ा काल्पनिक है. इसी प्रकार जगत की, जो जगत की कल्पना है, जगत है, ये ब्रह्म में ही अर्थात आत्म स्वरूप में ही दिख रहा है, प्रतिभासित हो रहा है, और ये जगत आत्म सत्ता से, आत्म स्वरूप से अलग नहीं है. स्वस्वरूप आत्मा में का त्याग में जगत को जान करके तक्तेन भुंजिता, वो आत्मा का पालन करते हैं, अर्थात त्याग पूर्वक पालन करते हैं. कहने का अभिप्राय, जिसने पुत्रेश समस्त एषणाओं का त्याग कर दिया हो और त्याग देने के उपरांत, जैसे मानो किसी का सेवक, उसने अपने सेवक को, पुत्र को अपने से अलग कर दिया, माने मृत के समान है, तो वो तो कुछ करने के लायक नहीं है, परंतु उसका पालन करना, आत्मा का पालन करना, त्याग पूर्वक जीवन का पालन करो, माने आसक्ति पूर्वक नहीं, उसे सत्य समझ करके नहीं, आत्मभाव से उसका पालन करना, जीवन निर्वाह करना, ये जो मार्ग है, बोले ये मार्ग ज्ञानियों के लिए है, आत्मनिष्ठवान पुरुषों के लिए है। इस मार्ग को वेद ने निवृत्ति मार्ग कहा है। और दूसरा जो वेद का मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग कर्म का मार्ग है, इसलिए कहा कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजिष्यामि सतगुण समा। कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करो, पर जीने की इच्छा करो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इच्छा तो होती है मैं जीऊं। कोई यहाँ मरना नहीं चाहता, कोई है ऐसा जो ये कहे मैं मरना चाहूं? भले वो बाहर से कहे कि बस अब तो भगवान मुझे उठा ले तो अच्छा है, पर सचमुच जिस समय उसे ये पता चले अब उठाने वाला है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कितना ही रुग्ण हो, कितना ही अस्वस्थ हो, कैसा भी, बस उसकी आशा ये रहती है कि मैं बच जाऊं, मेरा रोग कट जाए, मैं जीवित रहूं, ठीक हो जाऊं। उसके अंदर फिर भी एक जीने की चाह बनी रहती है। बोले जीना चाहता है और चाहते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ये जो चाह है जीने की, जो है चाह है, वो इसलिए है कि वो सत्य का अंश है। सत्य कभी मरता नहीं है, मिटता नहीं है। उस सत्य तत्व का अंश होने के कारण उसके अंदर सदर सर्वदा जीने की चाह होती है। और इच्छा करनी कोई, परंतु वेद कहते हैं इच्छा करना कि मैं 100 साल तक जीऊं ये बुरी बात नहीं है, पर इच्छा कैसे करो? बोले कर्म करते हुए, अकर्मण्य होकर के नहीं, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। बोले कर्म कैसे करोगे? राजस कर्ता बनकर, तामस कर्ता बनकर के नहीं, तामसी कर्म, कर्म तो हम कुछ करें नहीं और फल की बहुत इच्छा करें, और राजसी कर्ता वो है करें और साथ साथ उसको लेने की इच्छा भी करें। और कर्म में भी कभी कभी सात्विक कर्म होते हैं ना, इन सात्विक कर्मों में भी एक सूक्ष्म सा अभिमान आ जाता है सात्विक कर्ता के अंदर भी, वो मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, यही चाह कर लेना, यही इच्छा कर लेना अपने आप में अभिमान है। मैं कुछ, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, त्याग, मैंने फल त्याग दिया, कर्म के फल की मैं चाह नहीं करता, नहीं करता कहते हुए भी वो कर्ता बन जाता है। तो कभी कभी सूक्ष्म अभिमान, सात्विक कर्म में भी सूक्ष्म कर अभिमान आ जाता है। ये अभिमान इतना खराब अभिमान है नारायण, मैं कहती हूँ राजस और तामस तो बराबर हमको समझ में आते हैं, और कदाचित प्रयास करके उससे तो अपने आप को बचा लेंगे, पर ये सात्विक जो अभिमान है, सत्कर्म का अभिमान, जो सत्कर्म हम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उसका जो हमें अभिमान आ जाता है, ये अभिमान इतना सूक्ष्म है कि जो जितनी ऊंचाई पर चढ़ता है और उतनी ऊंचाई से जब गिरता है तो उसे उतनी ही बड़ी चोट लगती है। तो ये सात्विक, सात्विकता का भी, सत्कर्म का भी, अर्थात सत्कर्म करना चाहिए। बोले अग्निहोत्रादि, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अग्निहोत्रादि करते हुए, अर्थात यज्ञ कर्म करते हुए, अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जीने की इच्छा करो। अग्निहोत्र से अभिप्राय, पहले के ब्राह्मण लोग, पहले के लोग प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, यज्ञ किया करते थे, यज्ञ है। तो यज्ञ कर्म सत्कर्म है, और यज्ञ कर्म करते हुए जीने, ये यज्ञ दान तपश्चैव, ये तीन कर्म है, यज्ञ दान और तप, इन तीनों कर्मों को हमारे यहाँ सत्कर्म कहा गया है, और यही धर्म है। तो सत्कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें, अर्थात कर्म करते हुए जीने की, कर्म में सत्कर्म, और उस सत्कर्म क्या है ये बात समझ में आती है सत्संग से। सत्संग के बिना, आप भागवत कई बार सुनते हैं, उसमें बड़ा सुंदर उपाख्यान आता है कि नारद जी जब भक्ति के दुख को दूर करने के लिए उनकी पीड़ा उनके कष्ट का निवारण करने का संकल्प करते हैं और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं होती, तो देवर्षि नारद तप करने के लिए बद्रिक आश्रम की ओर चले। जब बद्रिक आश्रम की ओर गए तो उनको ये आवाज तो आई, सत्कर्म करो सत्कर्म करो, पर सत्कर्म क्या है ये बताएगा कौन। तब उन्होंने उनको दर्शन मिला सनकादि ऋषियों का, उनसे पूछा, तब उन्होंने सत्कर्म बताया कि तुम यज्ञ कर्म करो, अर्थात श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराण यज्ञ करो। तो यज्ञ को सत्कर्म कहा है, सत्संग से सत्कर्म पता चलता है। यज्ञ कर्म का मतलब यही नहीं होता है कि हम केवल अग्नि में आहुति दें तो वही कर्म हमारा यज्ञ कर्म है। यज्ञ गीता जी के आधार पर आप विचार करें, यज्ञानाम जपस्मी, भगवान ने कहा जप करना भी यज्ञ है, ध्यान करना भी यज्ञ है, योग करना भी यज्ञ है, और द्रव को लेकर आहुति देना भी यज्ञ है, और यज्ञ कई प्रकार, और सत्संग सुनना भी यज्ञ है, भगवान की कथा सुनना भी यज्ञ है, भोजन करना भी यज्ञ है। हम भोजन करते हैं तो अहम वैश्वानरो भूत पाण्याम देह मासदम, जो इस शरीर में बलि वैश्वानर करते हैं, रोज हम भोजन करते हैं, ये भी हम यज्ञ ही कर रहे हैं। यज्ञ की भावना को लेकर अर्थात इस पवित्र भाव से भोजन हम ग्रहण करते हैं तो वो भी यज्ञ ही है। तो यज्ञ कई प्रकार का है, कई प्रकार के यज्ञों की चर्चा भगवान ने सिर्फ भगवत गीता में की है। तो इसलिए आइए, यज्ञ कर्म का अर्थ है कि वो सत्कर्म जिस कर्म में कर्तापन का अभिमान न हो, केवल कर्म करना है। ये यज्ञ कर्म, ये कर्म वो कर्म है कि ऐसी कथा मिलती है कि परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की ना, ईश्वर की, ईश्वर ने जब जीव की रचना की, विधाता ने सृष्टि रचना की, तो उन्हें कहीं संतुष्टि नहीं हुई। अनेक अंडज उद्दज स्वेदज जरायुज अनेक प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया, परंतु कहीं उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। जब सबसे आखिर में मनुष्य की उत्पत्ति की तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि नर भगवान अपनी इस कृति को देखकर ईश्वर को बड़ा संतोष मिला, बड़ा समाधान हुआ कि ये मैंने, मेरे द्वारा बहुत सुंदर रचना हुई। अपनी ही कृति को देखकर, जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी कला को जब देखता है, जिस समय वो कला पेंटिंग करता है उसके अंदर भाव रहता है, और वो अपनी भावना को अपनी लेखनी के, अपने कलम के द्वारा, अपने ब्रश के द्वारा, अपने रंग के द्वारा वो उसे मूर्त देता है, और जब तत्कर तैयार होती तो वो पूरा निहारता है और उसके हृदय के संपूर्ण भाव को वो प्रतिबिंबित होता हुआ उस मूर्ति में जब देखता है तो उसे बड़ा संतोष मिलता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे ईश्वर को बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा कि स्वयं इच्छा, ईश्वर की भी इच्छा कर गई कि मैं इसी के अंदर जाके बस जाऊं। तो वही जीव हो गया, ऐसा हमारे संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो जब जीव बनकर सामने खड़ा हुआ तो ईश्वर अदृश्य होने लगा। अब तो जीव छटपटा कर रुदन करने लगा कि प्रभु आपने मेरी रचना करके अपने से मुझे अलग कर दिया, और अब मैं आपको कैसे प्राप्त करूं। भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा, चिंता मत कर, मैं तुझे एक ऐसी बूटी तेरे हाथ में देता हूं, यदि तू इसे खोएगा नहीं तो जहां भी जाएगा वहां से तू मुझे प्राप्त कर लेगा। तेरे हाथ में एक ऐसी बूटी बंद करके देता हूं। तो वो बूटी क्या है? बोले, मुट्ठी बांध आए जगत में हाथ पसारे जाओगे, क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे। तो उस बंद मुट्ठी में भगवान ने एक बूटी पकड़ा दी। बोले, इसे तो खोना नहीं, इसे संभाल करके रखना, इसे बिल्कुल अपने पास रखना, इसे कभी गंवाना नहीं, उस बंद मुट्ठी में क्या भर दिया। संत कहते हैं भगवान ने यज्ञ कर्म दे भर दिया, यज्ञ कर्म उसके हाथ में। यदि तू ये यज्ञ कर्म करता रहेगा, यज्ञ करता रहेगा, तो तुझे मेरे को प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं होगी। ये कहकर उसके हाथ में यज्ञ कर्म पकड़ा दिया। और हम सचमुच आज यज्ञ कर्म भूल चुके हैं, यज्ञ के करें यज्ञ नहीं करते। यज्ञ कर्म कैसे करें? बोले उसमें लिप्त होकर के नहीं, आसक्त होकर, न फल में न फला फल के, न में कर्म फले लिप्लेंती, कर्म के फल में भी लिपायमान न हो, कर्म के फल के साथ कर्म में भी हमारी आसक्ति न हो, और न ही कर्म फले स्पर्शा, मन के अंदर ये आकांक्षा अपेक्षा ही हो कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए। केवल करना है ये मार्ग, जो मार्ग है नारायण, ये प्रवृत्ति मार्ग है कर्म का। कर्म करते हैं एक साल नहीं, दो साल नहीं, सौ साल तक, जब तक जियो तब तक। हम कहते हैं हम कब तक यज्ञ करेंगे, कब तक दान करेंगे, कब तक हम पूजा करेंगे, यज्ञ दान तप करेंगे, हम कब तक तप करेंगे? बोले जब तक शरीर है तब तक तप करेंगे। तप शरीर से भी होता है, मन से भी होता है, और वाणी से भी होती है। तीन प्रकार का तप कहा गया है। और यज्ञ भी, यज्ञ कर्म भी एक शरीर से है, एक मन से है, और एक वाणी से है। यज्ञ के ऊपर भी, यज्ञ कर्म भी, और दान भी इसी तरह से है नारायण। और इस कलिकाल में तो दान का बड़ा भारी महत्व बताया गया है, दान करना चाहिए। बोले दान कैसे करना चाहिए? बुद्धि पूर्वकम ददाति दानम, विचार पूर्वक दान करना चाहिए। दान करना चाहिए इस कलिकाल में। धर्म के चार पाद कहे गए, सत्य, शौच, दया और दान। ये चार पाद धर्म के कहे गए हैं, जिसमें कहते हैं कि इस कलिकाल में तीन पांव तो धर्म के टूट गए, केवल एक पांव में खड़ा धर्म है। बोले कलिकाल का सबसे बड़ा धर्म है दान। पर दान करना कैसे चाहिए? दान का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को पैसा दे दें तो वो वही दान है। तो वो अच्छी वाणी से भी होगा, अच्छा वो मीठा शब्द बोल करके भी है, और शरीर से भी है, धन से भी है। अर्थात हम जितना हो सके इन सब से हम सेवा करें। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि सेवा करना, सत्कार करना, सम्मान करना, धर और उदारता, सहिष्णुता, ये जो हमारे सत लक्षण हैं सत्कर्म के, वो सब हमारे सील के साथ जुड़ जाने चाहिए, स्वभाव के साथ जुड़ जाने चाहिए। यदि स्वभाव के साथ जुड़े होंगे तो आप इनको करते हुए कभी थकेंगे नहीं। एक बात ध्यान रखना, जो चीज स्वभाव में नहीं होती, एक माँ को एक बच्चे को पालने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वो न जाने कितनी बार रात को उठती है, कितनी बार रात को उठ उठ के बच्चे को दूध पिलाती है, कितनी बार उसके गीले कपड़े बदलती है, और कितनी बार उसको उठ के रात संभालती है, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है। परिश्रम तो उस माँ को बहुत करना पड़ता है। और कोई आके कह दे कि देखो तुम्हें इस बच्चे के साथ कितना परिश्रम करना पड़ा, कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, कितनी कुर्बानी करनी पड़ रही है, कितना तुम्हें अपने सब सुख छोड़ने पड़े, तो वो माँ कहते अरे नहीं 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 कुछ ही नहीं, मैं तो कुछ ही नहीं, ये तो कोई बात नहीं, ये तो मैं उसे जितना अपने बच्चे के साथ करते हुए इतनी सहजता से वो करती है कि उस छोटे से बालक के ऊपर ये एहसास नहीं जताती है कि मैंने देख तेरे ऊपर इतना काम किया है। वो अपनी सहजता के साथ करती है प्रसन्न। और उस कर्म का जो भार है वो उस माँ को महसूस नहीं होता, वो माँ को तकलीफ नहीं देता है। उसी तरह से यदि सत्कर्म करते हुए आप उसको बड़ी सहजता के साथ, स्वाभाविकता के साथ करेंगे तो उस कर्म में आपके अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं रहेगा। ये जो मार्ग है ये प्रवृत्ति मार्ग है, कर्म का मार्ग, सांसारिक मार्ग, व्यवहारिक मार्ग। याद रखना नारायण, व्यवहारिक जो मार्ग है ना, धर्म है ना, इसको धर्म का मार्ग कहते हैं, व्यवहारिक मार्ग। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि हम पारमार्थिक रूप में सब कोई पूर्ण है, परमार्थ में कुछ बनाना नहीं है। हम ये सोचे कि मैं अपना परमार्थ बना लूं, मैं तो ये प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा परमार्थ कुछ बन जाए, तो ये परमार्थ बनाना तो ऐसा ही समझना चाहिए जैसे जल के भीतर रहने वाली मछली ये कहे कि मैं इसलिए दौड़ भाग कर रही हूँ, नीचे ऊपर भाग रही हूँ कि मुझे जल मिल जाए, मैं अपनी प्यास मिटा लूं। जल को खोजने के लिए जैसे मछली का उद्योग आपको दिखाई पड़ता है, कभी कभी मछली की ओर देखना वो बड़ी बेचैन दिखाई पड़ती है, कभी नीचे दौड़ती है, कभी ऊपर दौड़ती है, कभी आगे पीछे सब जगह दौड़ती है। तो उस मछली से पूछो कि तू इतनी बेचैन मारी मारी क्यों फिर रही है, वो मछली ये कहे कि मैं जल की तलाश में भटक रही हूँ, तो आपको सुन के कैसा लगेगा। वैसे ही कोई आदमी ये कहे कि मैं अपने परमार्थ को बनाने के लिए, याद रखो पारमार्थिक स्वरूप में सब पूर्ण है, यहाँ कोई अपूर्ण नहीं है। अपूर्णता है, अपूर्णता है तो किस बात में अपूर्णता है, जो हमारा व्यवहार है ना, ये व्यवहार अपूर्ण है, इसलिए व्यवहार शुद्धि। जब तक व्यवहार में शुद्धि नहीं आएगी तब तक हमें अपने पारमार्थिक स्वरूप का बोध नहीं होगा। इसलिए सुधारना है, कुछ करना है तो किस में करना है, अपने व्यवहार में करना है। बदलाव कुछ लाना है, बदलाव प्रवृत्ति में होता है, निवृत्ति में बदलाव नहीं है। निवृत्ति तो अपना स्वरूप है, बदलाव यदि कोई है तो वो प्रवृत्ति में है, प्रवृत्ति धर्म। तो हम सब लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप सब लोग प्रवृत्ति धर्म पारायण हैं, प्रवृत्ति में चल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है, अपना अपना संसार है, तो उस संसार में आपको अपना व्यवहार सुधारना है। जब और वो व्यवहार कैसे कैसे सुधरे, बोले जब तक व्यवहार में, व्यवहार को सुधारने के लिए, व्यवहार को पवित्र बनाने के लिए ये तीन कर्म हैं, यज्ञ दान तप, और इन तीनों कर्मों को निरंतर करना चाहिए। अब आप ये कहें कि ये तीन यज्ञ कैसे करें, ये यज्ञ कैसे करें, यज्ञ दान कैसे करें, यज्ञ तप कैसे करें, तो ये सब समझने के लिए यज्ञ दान तप कैसे होना चाहिए, सत्संग करें, गीता जी के 18वां अध्याय पढ़े, शुरू में ही है उसका, बहुत भगवान ने कई बार इस बात का उल्लेख किया। ये ही दो मार्ग हमारे लिए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग में चलने वाले साधु सन्यासी योगी अर्थात आत्मवेता आत्मज्ञानी है, प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले, कर्म के मार्ग में चलने वाले ये संसारिक लोग जो व्यवहार हैं, अर्थात जिन्हें आत्म तत्व का बोध नहीं है, उनके लिए ये कर्म का मार्ग है। श्रुति उपनिषद ये दो मार्ग व्यास जी महाराज बताते हैं। यदि इन दोनों मार्ग में से, दोनों मार्ग में से जिसने एक मार्ग का भी अनुसरण नहीं किया, बोले उनका क्या होगा, जो न उस मार्ग को पकड़ते हैं न इस मार्ग को पकड़ते हैं, उन लोगों का क्या होगा। उनके लिए कहा, असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा व्रता, अर्थात वह लोग असूर्या नामते लोका अंधेन तमसा व्रता, वे आसुरी संबंध से लोक आत्मा का दर्शन न करने वाले अज्ञान के कारण वह जो अपने स्वरूप को नहीं समझते, अज्ञान से आच्छादित हैं, वो तो आत्महत्यारे हैं, ऐसा कहा गया है। असूरिया नामते लोका, असूरिया का अभिप्राय असुरी भाव भी है, जहाँ सूर्य नहीं है, अंधकार से ढका हुआ है, वह लोग माने वो लोग कौन जो आत्म इन स्वरूप को नहीं जानते हैं, उन लोगों को कौन सा लोक मिलता है, बोले अंधकार से भरा हुआ, अज्ञान से अंधकार से भरा हुआ असूरिया नामते लोग। असूर्य कौन है, यहाँ हमारे शरीर की इंद्रियों को ही, जिनको ज्ञान नहीं है, इंद्रियों को अपना ही बोध नहीं है, इंद्रियां अपने को नहीं पहचानती हैं, मैं इंद्रियों को पहचानती हूँ पर इंद्रियां मुझे नहीं पहचानती, इसलिए इंद्रियों का जो भोग पालन है वो भोग के लिए नहीं है, उनके पालन के लिए है। प्रथम बात में ही कही है कि इनका पालन तक्तेन भुंजिथा, माने इनका पालन करो,